प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं मुरारीलाल शर्मा सांवले सपनों की याद पाठ के शेष भाग की व्याख्या के लिए पुनः उपस्थित हूँ। मैंने सांवले सपनों की याद पाठ के प्रथम भाग में सारकथन के साथ साथ पृष्ठ संख्या 43 पर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है यहाँ तक की व्याख्या स्पष्ट की थी। अब उससे आगे पृष्ठ संख्या 43 पर ही अंतिम चार पंक्तियों से इस भाग में शुरू करने जा रहा हूँ। सांवले सपने और सालिम अली की शव यात्रा के बारे में आप पढ़ चुके हैं, अब आगे सालिम अली की विचारधारा, उनके व्यक्तित्व, क्रियाकलाप आदि के बारे में बताया गया है। देखिए पृष्ठ संख्या 43 पर अंतिम चार पंक्तियों से। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। इसके द्वारा लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि सालिम अली बहुत अच्छे इंसान थे, वे अद्भुत व्यक्ति थे और दुनिया से अलग व्यक्तित्व वाले थे। ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आज हम यकीन नहीं कर सकेंगे कि जिसने अपना पूरा जीवन पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया। एहसास, भाव, अनुभूति यानी भावनाओं की ऊबड़ खाबड़ जमीन। ऊबड़ खाबड़ जमीन क्यों कहा है? ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची अर्थात जीवन में आए उतार चढ़ाव। जो व्यक्ति भावुक होता है, वह भावनाओं में बह जाता है, तो उसे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव सहन करने पड़ते हैं। सालिम अली के जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आए थे। मिथक, मिथक से तात्पर्य जिसकी वास्तविकता का प्रमाण न हो, जो कथाओं के माध्यम से समाज में विद्यमान रहता हो और नए रूप में हमारे सामने आता रहता हो। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पहले कभी था पर हम उसकी प्रामाणिकता को साबित नहीं कर सकते, आज भी प्रचलन में है, आज भी वो हमारे सामने है। सालिम अली सबसे अलग और भावुक व्यक्ति थे जो प्रकृति और पक्षियों के बीच रहती थी। उनके प्रति उनके हृदय में गहरी संवेदना थी। सालिम अली के लिए मिथक शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि यदि 100 साल बाद कोई सालिम अली के बारे में बात करे तो लोग यकीन नहीं करेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, पर उनके बारे में नए नए रूप में चर्चा अवश्य होती रहेगी। इसी बात को लेखक ने श्री कृष्ण के उदाहरण से स्पष्ट किया है कि लोग श्री कृष्ण के नटखट स्वरूप और उनकी लीलाओं से प्रभावित होकर उनके अस्तित्व को मानते हैं, उनका गुणगान करते हैं, पर उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध नहीं कर पाते। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। लेखक ने स्पष्ट किया है कि इतिहास में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। यह सब कितने हजार साल पहले हुआ? कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला कब रची थी? उन्होंने गोपियों के साथ शरारतें की, गोपियों के माखन से भरे भाड़े, भाड़े का मतलब बर्तन, तो माखन भरे बर्तन फोड़े थे, माखन खाया था, बंसी बजाई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, पर आज कोई भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। अर्थात आज कोई वृंदावन जाए और यमुना नदी का सांवला पानी देखे तो उसे तुरंत याद आ जाएगा कि यमुना का जल सांवला क्यों हो गया था। बच्चों आपने भी सुना होगा कि यमुना के पानी का रंग सांवला क्यों हो गया था। तो इसकी भी एक कहानी है। उस पानी को देखकर पूरा घटनाक्रम याद आ जाता है क्योंकि वहां कालिया नाग रहता था और श्री कृष्ण ने काली नाग को नाथ दिया था। उस नाग के जहर के प्रभाव से पानी का रंग सांवला हो गया था। पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि कृष्ण ने वहां कालिया नाग का मर्दन किया था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। इसके द्वारा लेखक ने बताया है कि वृंदावन में सुबह सुबह पतली पतली गलियों से लोगों की भीड़ यमुना नदी की ओर स्नान करने के लिए जाती है तो लोगों को बांसुरी की धुन सुनाई देती है, पर सच में बांसुरी की धुन नहीं होती। लोगों को महसूस होता है क्योंकि वृंदावन का माहौल ही ऐसा है, वहां का प्रभाव ही ऐसा है। कृष्ण की भक्ति में डूबे रहने के कारण उन्हें कृष्ण की उपस्थिति महसूस होती है। लोगों को लगता है कि कन्हैया कहीं से आ जाएगा, बांसुरी बजाएगा। इसका कारण वहां का पूरा वातावरण कृष्णमय होना है। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अर्थात वृंदावन में जिस तरह सुबह का वातावरण होता है उसी तरह शाम भी कम आश्चर्यजनक नहीं होती। आपने वहां की कहानी सुनी हो या न सुनी हो, पर वहां रहने वाले लोग जिस तरह कृष्ण से संबंधित घटनाओं का वर्णन करते हैं तो वहां जाने वाले लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। शाम होते ही बगीचे का माली सैलानियों को हिदायत देता है कि अब यहां से जाओ, कृष्ण के आने का समय हो गया है। बच्चों वृंदावन के निधवन के बारे में प्रचलित है कि वहां अब भी रात के समय कृष्ण आते हैं तो माली के हिदायत देते ही सैलानियों को लगता है कि बस अब थोड़ी ही देर में कृष्ण कहीं से आ टपकेंगे और अचानक बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे और उनकी बांसुरी की मधुर धुन का जादू पूरी वाटिका पर छा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वहां कृष्ण की बांसुरी बज रही है, पर ऐसा माना जाता है कि कृष्ण वहां आते हैं और बंसी बजाते हैं। तो कृष्ण के वहां आने की मान्यता के कारण शाम के बाद वहां किसी को जाने नहीं दिया जाता। ये सब वहां होता है, लोग मानते भी हैं, पर इसकी प्रामाणिकता हमारे पास नहीं है, यह भी मिथक है। लेखक कहना चाहता है कि ऐसे कितने मिथक इस दुनिया में भरे पड़े हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। पृष्ठ 44 पर अगला अनुच्छेद देखिए। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। अब लेखक फिर से सालिम अली के बारे में बताना चाहते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। शती का अर्थ है 100। सालिम अली की उम्र 100 वर्ष के करीब पहुंच रही थी। वे शरीर से कमजोर थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में बताया है। एक तो पक्षियों की खोज में हमेशा घूमते रहते थे, वनों में भटकते रहते थे। कमजोर शरीर, घूमते रहने से थकान और फिर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी थी, अर्थात उनकी मौत कैंसर के कारण हुई थी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। तलाश का अर्थ खोज और हिफाजत का अर्थ सुरक्षा है। लेखक कहता है कि सालिम अली अपने अंतिम समय तक पक्षियों की खोज और उनकी सुरक्षा के लिए काम करते रहे थे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनके मरने के बाद ही उतरी थी। तो जो बर्ड वाचर होते हैं उनके पास दूरबीन होती है, उसी से तो वे दूर दूर तक और ऊंचे ऊंचे पेड़ों की डालियों पर बैठे पक्षियों को देखते हैं। कहने का भाव यह है कि वे जब तक चल फिर सकते थे, काम कर सकते थे, तब तक पक्षियों के लिए काम किया। अब आगे का अनुच्छेद। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही हुआ हो। सालिम अली जैसा बर्ड वाचर पक्षी विशेषज्ञ शायद ही हुआ होगा, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली अकेले रहने पर बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को, दूर क्षितिज, क्षितिज का अर्थ है जहां धरती और आसमान मिले हुए प्रतीत होते हैं, वो मिलते नहीं हैं, सिर्फ महसूस होते हैं, अर्थात बहुत दूर। तो दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। कहने का भाव है कि उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं, अर्थात वे जहां भी जाते थे उन्हें अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर लेते थे। तो जहां भी जाते थे, जिन लोगों से मिलते थे, उन सबको अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर लेते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हस्ती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। ये वो अच्छी तरह जानते थे कि प्रकृति बहुत सुंदर है, इसीलिए वे प्रकृति के बीच गए और पक्षियों की खोज में रहे, उन पर शोध करते रहे, उनके बीच रहे। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। लेखक कहना चाहता है कि उन्होंने पक्षियों की खोज में इतनी मेहनत की थी, उनके लिए इतना समय दिया था, उन पर शोध किया था, उन पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी थीं, वह सब अनमोल है। इसके लिए उन्होंने स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। यह सब करने में उनकी पत्नी तहमीना ने भी बहुत सहयोग किया, उसका योगदान भी कम नहीं था। तहमीना सालिम अली के साथ ही स्कूल में पढ़ा करती थी। वह स्कूल के समय की सहपाठी थी। अब अगला अनुच्छेद पृष्ठ संख्या 45 पर। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। लेखक सालिम अली के चौधरी चरण सिंह से मिलने के बारे में बता रहे हैं। चौधरी चरण सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और वो किसान परिवार से आते हैं। तो सालिम अली ने अपने अनुभवों के आधार पर केरल में जो साइलेंट वैली है वहाँ बहुत सारी प्रजातियों के पक्षी रहते हैं, केरल की हरियाली भी बहुत अच्छी है। तो सालिम अली ने केरल की साइलेंट वैली पर आने वाले खतरों को भांप लिया था। यदि केरल की साइलेंट वैली रेगिस्तानी हवा के झोंकों से उजड़ गई, नष्ट हो गई, खराब हो गई, तो वहां रहने वाले प्राणियों को बहुत हानि होगी, प्राणियों को बहुत नुकसान होगा। यह सब उन्होंने विस्तार के साथ चौधरी चरण सिंह को बताया और वहां की सुरक्षा का अनुरोध किया। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी थीं। चौधरी चरण सिंह गांव से थे, किसान परिवार से थे। वे खेतों की सूखी तपती मिट्टी पर वर्षा की बूंदों के महत्व को जानते थे। वर्षा का पानी किसानों में उमंग भर देता है। वर्षा का पानी किसानों के लिए कितना उपयोगी होता है, किसान नेता होने के कारण वे इन सब से परिचित थे। और सालिम अली ने बिगड़ते पर्यावरण का उनसे जो जिक्र किया और पर्यावरण बिगड़ने पर प्रकृति को किस तरह का खतरा होगा, जीवों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि समय रहते जीवों को संरक्षित नहीं किया, उनकी सुरक्षा नहीं की, तो साइलेंट वैली की क्या स्थिति हो जाएगी, यह सब विस्तार से बताया। वह सब सुनकर और पर्यावरण के संभावित खतरों के दूरगामी परिणामों को सोचकर चौधरी साहब भावुक हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा, कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। इसका भाव यह है कि आज न तो सालिम अली हैं और न ही चौधरी चरण सिंह, दोनों की मृत्यु हो चुकी है। लेखक कहना चाह रहा है कि प्रकृति के बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। चौधरी साहब किसान थे, वे खेतों की मिट्टी और वर्षा के महत्व को जानते थे। सौंधी माटी अर्थात तपती जमीन पर वर्षा की पहली बूंदें गिरती हैं और मिट्टी से जो भीनी गंध आती है उस समय एक प्रकार की खुशबू आती है, उस खुशबू वाली जमीन को सौंधी माटी कहते हैं। वर्षा से खेतों में फसल होती है, उसके बारे में कौन सोचेगा। बच्चों आज तो फसलों की सिंचाई के लिए बहुत से साधन हैं, पर पहले अधिकांश खेती वर्षा के पानी पर ही निर्भर होती थी। इसी तरह सालिम अली की मृत्यु के बाद हिमालय और लद्दाख जो बहुत ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ रहने वाले पक्षियों की सुरक्षा की वकालत कौन करेगा। इस भाग में यहीं तक और इसके बाद में आगे का पाठ अगले भाग में बताऊंगा। धन्यवाद।